ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಜ್ ಕೆ ಸಭಾ ಮೇ ಹಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಕೆ ಸಿರ್ಮೌರ್ ಆದರಣೀಯ ರಮೇಶ್ ಭಾಯಿ ಜೀ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಹೈ. ಹಮ್ ಸಬ್ ದಿಲ್ ಕೆ ಸಮ್ಮಾನ ಸಹಿತ ಆಪ್ಕಾ ತಹೆ ದಿಲ್ ಸೆ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನೂರೆ ರತನ್ ಬಾಪ ದಾದಾ ಕೆ ದೈದೀಪ್ಯಮಾನ ನಕ್ಷತ್ರೋ ಮೇ ಸೆ ಪದ್ಮಾ ಪದಮ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಸಾಕಾರ ಮಮ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಕಿ ಪಾಲನಾ ಸೆ ಪಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ದುವಾಓ ಸೆ ಸಂಪನ್ನ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ಅನುಭವೋ ಕಿ ಜೀವನ ಪುಸ್ತಿಕಾ ಸೆ ಚಲತೆ ಫಿರತೆ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಾಓ ಕಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಆಪಕಿ ಶೀತಲ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ಶೀತಲತಾ ತಥಾ ಅಪ್ನತ್ವ ಬರಸ್ತಾ ಹೈ. ಆಪಕಾ ಅನ್ಮೋಲ್ ಜೀವನ ಈಶ್ವರೀಯ ಪರಿವಾರ ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಮೇ ದರ್ಪಣ ಸಮಾನ ಪ್ರತೀತ ಹೋತಾ ಹೈ. ಆಪಕೆ ಬಾಪ ದಾದಾ ಕೆ ಸಾಕಾರ ಪಾಲನಾ ಕೆ ಅನುಭವೋ ಕೋ ಸುನತೆ ಸಭಿ ಪ್ಯಾರ ಭರಿ ಯಾದ ಮೇ ಖೋ ಜಾತೆ ಹೈ. ಮನ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೆ ಪಂಖೋ ಸೆ ಉಡಕರ್ ಬಾಪ ದಾದಾ ಕಿ ಪ್ಯಾರಿ ಪಾಲನಾ ಭರಿ ಗೋದ ಕಾ ರಸಾಸ್ವಾದನ ಕರ್ನೆ ಲಗತೆ ಹೈ. ಆಪಕೀ ಮಧುರ ಸಾಕಾರ ಯಾದೆ ಸುನತೆ ಹೀ ಮುಖ ಸೆ ಯಹಿ ಶಬ್ದ ಸುಮನ್ ನಿಕಲತೆ ಹೈ. ಹಮ್ನೆ ನಹೀ ದೇಖಾ ಮಮ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಕಾ ಸಾಕಾರ ಪ್ಯಾರ ಭಾಯಿ ಜೀ ಆಪಕೆ ದ್ವಾರಾ ಹಮ್ನೆ ಪಾಯಾ ಬಾಬಾ ಸಾಕಾರ ಕಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ರೋಮ್ ರೋಮ್ ಜೊ ಯಜ್ಞ ಚಲಾತೆ ಯೇ ರಮೇಶ್ ಭಾಯಿ ಜೀ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಅಂಕಿ ಕ್ಷಣ ಮೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಕೆ ಶೇದಾಯಿ. ಆಪ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿ ಕಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೈ. ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ರಾಜಯೋಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಹೈ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೈ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಹೈ. ರಾಜಯೋಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆ ಆನರರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೈ. 1953 ಮೇ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೇ ಯೇ ಬಾಬಾ ಕೆ ಗೋದ ಮೇ ಆಯ ಔರ್ ತಬ್ ಸೆ ಆಪಕಾ ಅಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ ಪಿತಾಶ್ರೀ ಜೀ ಕಿ ಪಾಲನಾ ಮೇ ಹೀ ಹುವಾ ಹೈ. ಹಮಾರೇ ಜೈಸಿ ಬಹುತ್ ಸಾರಿ ಬಹನೋ ಕೋ ಆಪ್ನೆ ಬಿನಾ ಪಢಾಯಿ ಕೆ ಹೀ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬನಾ ದಿಯಾ ಹೈ. ದೇಖಾ ಹೈ ಝಲಕ್ ಆಪಕೆ ಹಸ್ತೆ ಹುವೆ ತಾರೋ ಮೇ ಆಪಕೆ ಜೈಸಾ ಕೋಯ್ ಖುಷ್ಬೂದಾರ್ ಫೂಲ್ ನಹೀ ರೂಹಾನಿ ಬಗಿಯಾ ಮೇ. ಐಸೆ ಹಮಾರೇ ವರಿಷ್ಠ ಪರಮಾದರಣೀಯ ಭ್ರಾತಾಜಿ ಕಾ ಏಕ ಬಾರ್ ಫಿರ್ ಹಮ್ ಬಹುತ್ ದಿಲ್ ಸೆ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಮೇ ಆಪಸೆ ವಿನಮ್ರ ಅನುರೋಧ ಕರ್ತಿ ಹೂ ಕಿ ಆಜ್ ಕಾ ಜೊ ಹಮಾರಾ ವಿಷಯ ಹೈ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆ ಸಫಲ ಕರ್ನೆ ಔರ್ ಕರಾನೆ ಕಿ ವಿಧಿ ಯೇ ಆಪಕೆ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧ ವರದಾನಿ ಬೋಲೋ ಸೆ ಹಮೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕರೆ. ಆದರಣೀಯ ರಮೇಶ್ ಭಾಯಿ ಜೀ
ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಪ್ ಸಬ್ಸೆ ಮಿಲ್ ಕರ್ಕೆ ಬಹುತ್ ಖುಷಿ ಹುಯಿ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಮೈ ಬಿ ಆಪ್ ಸಮಾನ್ ಆಪ್ ಸರಿ ಕಾ ಏಕ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಬಾಬಾ ಕಾ ಬಚ್ಚಾ ಹೂ. ಬಾಬಾ ಜಿತ್ನಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕರಾತೆ ಜಿತ್ನಾ ಕಹತೆ ಉಸ್ಕೋ ಧಾರಣ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ಔರ್ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಬಹನ್ ನೆ ಜೊ ಬತಾಯಾ ಪರಿಚಯ ಹೋ ತೊ ಆಕ್ಸಿಲಿಯರಿ ಹೈ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹೈ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ತೊ ಸಚ್ಚಾ ಪರಿಚಯ ತೊ ಯಹಿ ಹೈ ಕಿ ರಮೇಶ್ ಭಾಯಿ ಭೀ ಏಕ ಆತ್ಮಾ ಹೈ ಜೈಸೆ ಆಪ್ ಸಬ್ ಭೀ ಆತ್ಮಾ ಹೋ ಔರ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಮಿಲ್ಜುಲ್ ಕರ್ ಕರ್ ಪ್ಯಾರೆ ಬಾಪ ದಾದಾ ಕೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ ಕರ್ಕೆ ನಯಿ ದುನಿಯಾ ಕಾ ಕಾರೋಬಾರ್ ಸಿದ್ಧ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಹೈ. ಔರ್ ಇಸಿ ಕೇ ಬೀಚ್ ಮೇ ಆಪ್ ಜಾನತೆ ಹೈ ಆಜ್ ಕಾ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ಕಹೀ ಔರ್ ಕಾ ಕಲ್ ಫೋನ್ ಭೀ ಆಯಾ कईयों ने कहा कि हम रविवार को ही भोग करने वाले हैं। मातेश्वरी जी का 24 जून को जो अव्यक्त दिन था, कईयों ने शनिवार सोमवार को तो कठिन होता है, रविवार ज्यादा होता है। इसी हिसाब से आज ही मैं समझता हूँ 80-90% सेवा केंद्रों के ऊपर मम्मा के लिए, मातेश्वरी जी के लिए भोग लगाया गया है, और यहाँ तो लगाया जाएगा। कहीं जगह पर सुबह होता है, कहीं जगह पर शाम को भी होता है। बाकी 8-10% शायद हो गए ऐसे जिनके पास कल सुबह भोग लगेगा। तो इसलिए सबसे पहला तो हम मातेश्वरी जी को ही याद करें, क्योंकि उनके साथ रहने का और उनकी पालना प्राप्त करने का बहुत हमको अच्छा सौभाग्य मिला हुआ था। मैं उनका ये अनुभव थोड़ा सुनाता हूँ। हमने मातेश्वरी जी को 1953 में बॉम्बे में देखा। बॉम्बे में मातेश्वरी जी आए थे, दो या तीन दिन रहे हुए थे। हमारे नजदीकी श्याम निवास करके एक मकान है, वहां पर किसी के फ्लैट के अंदर जो उन्होंने दिया था यूज करने के लिए, वहां रहे थे। और मैं 3 दिन में से एक दिन वहां गया था। पहली बार मातेश्वरी जी को देखा तो घर में आने के बाद मैंने मरे लौकिक माता जी को कहा कि ये मातेश्वरी जी सिंधी है या पारसी है। ये पहला मेरा प्रश्न उनके लिए हुआ, क्योंकि वो साड़ी जो है ना, हमारे महाराष्ट्र बॉम्बे के अंदर पारसी बहनें जो पहनती है, एकदम लंबी रखती है आगे की बात, और इस प्रकार से जो होता है वो उस प्रकार का उनका रहना करना था, साड़ी पहनने का था। तो मेरी लौकिक माता ने कहा कि वो बॉम्बे में रहे हुए और पारसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, पढ़ाई किया हुआ है, उसके कारण इन्होंने भी ये इस प्रकार के साड़ी पहनने का सिस्टम बनाया। बाकी तो थे और है भी सिंधी, और सिंधी के ही रहने वाले हैं। उनके पिताजी बॉम्बे में रहते थे, इसके कारण बॉम्बे में पढ़ाई लौकिक बचपन की हुई, और फिर पिताजी के शरीर छूटने के बाद वो कराची गए। वहां पर भी कुंदनमल हाई स्कूल है, उसके अंदर भी मातेश्वरी जी और दादी प्रकाशमणि आदि पढ़ते थे, और वहां ही उनके माता जी का ख्याल था कि मैं यहाँ आई हूँ तो उनकी शादी करने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसके लिए उनका ये लड़का ढूंढ रहे थे। इतने में किसी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा से आप मिलो, तो ब्रह्मा बाबा से मिले, और ब्रह्मा बाबा ने उनको बताया कि जीवन की वास्तविकता क्या है, जीवन की सत्यता क्या है, जीवन की सार्थकता क्या है, और जिसके आधार पर जीवन सफल कैसे हो सकता है, वो सारी बातें 15-20 मिनट 25 मिनट में बाबा ने समझाई। और उसी टाइम पर मातेश्वरी जी ने नक्की किया कि हम इस प्रकार के ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उस प्रकार से उन्होंने अपनी माताजी को भी बताया, और उनके माताजी भी बाद में ज्ञान में चली। उसकी बहन जो है, उसकी माताजी का नाम रोचा था, और इसकी एक बहन थी जिसका नाम था पार्वती। तो पार्वती बहन भी बाद में जब सब हिंदुस्तान आ गए तो पार्वती बहन पुणे में रहती थी। मातेश्वरी जी की माताजी भी जो है वो पार्वती बहन के साथ में रहती थी, रोचा बहन भी। इस प्रकार से उनका लौकिक परिवार था, और लौकिक परिवार होते हुए भी अपना जीवन को अर्थात अपने सौभाग्य को श्रेष्ठ में श्रेष्ठ बनाने का कर्तव्य मातेश्वरी जी ने किया, जिसको हम कहते हैं अपने जीवन को सफल बनाने का कर्तव्य किया। कई बार मैं अपने मन में प्रश्न पूछता हूँ कि मुझे ब्रह्मा बाबा प्यारा है ज्यादा या मातेश्वरी जी प्यारी है। तो कई बार दिल से आवाज यही आता है कि बाबा जो है वो तो बहुत अनुभवी रथ था, व्यापार किया हुआ था, राजा महाराजाओं के साथ उनका संबंध था, अपने पास धन भी था, अपने पास परिवार भी था, सब कुछ था, और उसके ऊपर श्री बाबा का रथ भी बना, और उसके कारण बाबा के लिए जीवन बनाने का पुरुषार्थ काफी सरल हो गया था। जबकि मातेश्वरी जी जो है उनका जो जीवन जो है सफल बनाने के लिए उनको काफी संघर्ष करना पड़ा। जैसे मैंने बताया उनके पिताजी शरीर छोड़ दिया था, तो इसके कारण काफी साधारण परिवार के रूप में बन गए थे, आमदनी कम हो गई थी, और इसके कारण मम्मा से मातेश्वरी जी से हमने पूछा भी था कि आपने अपना कितना धन सफल किया, तो मातेश्वरी जी ने बताया कि मैंने खास कोई धन नहीं किया, क्योंकि माताजी के पास क्या था और माताजी को अपना भी जीवन व्यवहार करना था, इसलिए खास नहीं था। इसलिए मेरे को लगा, ऐसा लगा, और आप सबको बताऊं कि आप सबने भी अपना जो जीवन का जो तन मन धर्म से जो धन जो सफल किया हुआ होगा, वो कम से कम मातेश्वरी जी के ने अपना जो धन जो लौकिक धन जो सफल किया, इनसे आप सबने ज्यादा किया हुआ होगा। परंतु हैंडीकेप रेस के अंदर धन अकेली जीवन की सफल यात्रा में नहीं काम में आता है, और भी कई बातें जीवन की सफलता के अंदर काम में आती हैं। मम्मा पीछे से आई, थोड़ी देरी से आई, उसके पहले कई बहनें यज्ञ चंबालती थी, चलाती थी। मातेश्वरी जी को भी 7 दिन का कोर्स जो है वहां पर उस टाइम पर कराची हैदराबाद में किकनी करके एक बहन थी, वो रहती थी, किकनी बहन ने मातेश्वरी जी को 7 दिन का कोर्स कराया। इस प्रकार से एक बहन के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके मातेश्वरी जी रेगुलर आने लगे। उसमें से बाबा ने उनको परख लिया और उनको ओम राधे के रूप में बना करके कारोबार के लिए निमित्त बनाया, और जब बाबा समर्पित हुए तब मातेश्वरी जी की मातेश्वरी जी को कमिटी का हेड बना करके फिर कारोबार शुरू किया। और इतने में बाबा कश्मीर गए, 3-4 महीना कश्मीर में रहे, तो 3-4 महीना बाबा ने मातेश्वरी जी को ही यज्ञ का कारोबार संभालने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं दी, अनेक प्रकार की डायरेक्शन दिया, और इस प्रकार से बाबा कश्मीर में थे और ये मातेश्वरी जी यहाँ पर संभाल रहे थे। और उसके आधार पर क्या हुआ कि सबको संतुष्ट करने की कला मातेश्वरी जी के अंदर आ गई, सबका सुनना और सुन करके सबको सॉल्यूशन देना, सबको कारोबार में मदद करना, इस प्रकार से होता था। तो इसलिए हमने आपको बताया कि हमने 1953 में पहली बार मातेश्वरी जी को देखा, फिर 57 में अक्टूबर या नवंबर के अंदर बॉम्बे में बाबा मम्मा दोनों 4.5 महीना आए थे बॉम्बे में, तब हमने निमंत्रण दिया था, इसके कारण मैं स्टेशन पर गया था। मेरी कार में मैं कार चलाता था, एक साइड में रुमा बाबा बैठे थे, पीछे की सीट में हमारी लौकिक माता जी बैठी थी और दूसरी साइड में मतलब मातेश्वरी जी बैठे थे। तो इस प्रकार से बाबा मम्मा बॉम्बे में आए और उनके आधार पर जहाँ पर रहे, वेस्टर्न कोर्ट करके बिल्डिंग था उसमें रहे, और उसके आधार पर रोज सुबह मातेश्वरी जी की बाबा के मुरली से पहले मातेश्वरी जी आते थे और 10-15 मिनट बाबा के मुरली वो सुनाते थे, और उसके बाद बाबा आते थे और उस प्रकार से कारोबार होता था। कई बार बाबा मम्मा को कार में घूमने के लिए लेके जाना हुआ, इस प्रकार से कई बार उनके साथ भोजन करने का अवसर मिला, इस प्रकार से कई बातें सीखने को मिली कि कैसे समय को सफल करना होता है। सारा दिन मातेश्वरी जी अपना कारोबार करते थे, कागज भी होता था, बाबा कागज लिखते थे, उसके अंदर साइड में जगह होती थी, तो मम्मा मातेश्वरी जी कहते थे कि ये कागज क्यों वेस्ट होना चाहिए, तो 99% मातेश्वरी जी किसी को भी पत्र लिखना होगा तो बाबा के पत्र के अंदर ही साइड के अंदर लिख करके वो पत्र भेजते थे। तो इससे मालूम पड़ता था कि बड़े बड़े अक्षरों में बहुत जगह घेरने वाला अक्षर जो था वो बाबा का था, और उसके बाद में छोटा अक्षरों में मातेश्वरी जी का था। मातेश्वरी जी को गुरुमुखी ज्यादा अच्छी आती थी, इसलिए वो सिंधी में नहीं लिखते थे, वो गुरुमुखी में लिखते थे और बाबा सिंधी में लिखते थे, इस प्रकार से दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट भी था। और फिर 4.5 महीने के बाद बाबा मम्मा बॉम्बे से आबू चले गए, उसके बाद तो संपर्क खास रहा नहीं, मैं भी अपने लौकिक कारोबार में व्यस्त हो गया था। उसके बाद हम लोग ने नक्की किया 61 के अप्रैल या मई महीने में कि हम लोग आबू जाएंगे। जब हम आबू गए तो हमारा सारा परिवार गया हुआ था, तो आबू में गए तो मालूम पड़ा कि मातेश्वरी जी नहीं थे, मातेश्वरी जी नहीं थे। तो हमने कहा ठीक है, बाबा के साथ हम बैठते थे, खाना पीना घूमना फिरना सब करते थे। इतने में 3 दिन के बाद मातेश्वरी जी आए, आए तो एकदम सुंदर रूप में उनका स्वागत हुआ। बहुत ही अच्छी रीत से मम्मा ने अपना कारोबार किया। और रात्रि क्लास के अंदर जब मातेश्वरी जी आए तो इन्होंने उनका जो कारोबार था वो उठा लिया था। मम्मा का कारोबार था रोज रात को क्लास के अंदर कचहरी करने का। ये बहुत सुंदर विधि है कि रोज के रोज की जो गलतियां जो है खुद ने अनुभव किया या खुद ने किया या दूसरे की नोट किया वो सारा ही रात्रि क्लास के अंदर सब एक दूसरे को बता देते थे, मातेश्वरी जी को बता देते। इसके कारण क्या था, कहीं कहीं बातें ऐसी होती थी कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग की होती थी या इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण होती थी, ऐसी होती थी 90% तो ऐसी ही छोटी छोटी बातें होती थी जो मिसअंडरस्टैंडिंग या नॉन कंप्लायंस ऑफ इन्फॉर्मेशन आदि के द्वारा होता था और मातेश्वरी जी उस फैसला करते थे। तो हमने देखा कि जिस दिन रात हापुर आदि जो पंजाब आदि का चक्कर लगा करके मातेश्वरी जी आए उसी दिन रात को भी उन्होंने अपना कारोबार जो था उठा लिया। और हमने देखा कि जब उसी रात को मातेश्वरी जी के मुरली के पास बाद बाबा आए तो बाबा ने आकर के पहले ही सवाल पूछा कि मम्मा कचहरी किया क्या, तो मातेश्वरी जी ने कहा हाँ क्या किया, तो बाबा ने कहा बच्ची पास हो गई। तो इस प्रकार से अपनी जो ड्यूटी जो है वो ड्यूटी निभाने में चलाने में मातेश्वरी जी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उनके जीवन के अनेक प्रकार के अनुभव थे। मैं वो ये बता रहा था हापुर आदि से मातेश्वरी जी आए, इन्होंने हापुर आदि का समस्या का बताया कि कैसे आर्य समाज आदि जो भी है हापुर में तंग करते हैं, वहां से बहनों को निकालने का प्रयत्न करते हैं आदि आदि सारा सुनाया, तो सारी क्लास के अंदर सुनाया। तो मेरे को मन में लगा कि ये तो हापुर में बहुत कुछ हो रहा है, तूफान हो रहा है, आर्य समाजी लोग जो है हम लोगों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं देते, पानी नहीं आने देते, सफाई नहीं होती है, सब्जी आदि भी कुछ नहीं आ सकती है, ऐसे कारोबार के अंदर कैसे रहा जाएगा और कितनी समस्याएं होंगी। तो उसी दिन रात को जब बाबा मुरली क्लास में मम्मा से ये सुना तो दूसरे दिन हमने बाबा मम्मा दोनों को ही पूछा कि बाबा और मातेश्वरी जी को भी पूछा कि ये जो हापुर में हंगामा हो रहा है उसके कारण आपके मन में कोई उसके बारे में चिंता तो नहीं होती है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप जानते हैं हमारे पास तो एक बहुत लंबी क्यू होती है, क्या क्यों कैसे कौन करेगा कैसे क्या होगा, इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे दिल में उठते ही रहते हैं। तो हमने बाबा को मम्मा दोनों को पूछा कि आपके दिल में मन में हापुर के बारे में कोई चिंता उसका टेंशन इसके आदि कुछ नहीं आता है? बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया और वो जवाब जो है मैंने अपने जीवन के अंदर भी धारण किया। बाबा ने कहा कि बाबा को कोई प्रकार की फिक्र नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि बाबा जानता है, हम सब जानते हैं, परंतु बाबा ने उस जो जानते थे बाबा उसको जीवन में धारण किया था। हम लोग सिर्फ सुनते रहते हैं, मुरलियों में सब बातें सुनते हैं, परंतु उसको जीवन में धारण करने का उत्साह हमारे से नहीं होता। इसलिए क्या होता है, हमारी कथनी और करनी में, आप सब अनुभवी है, हमारी कथनी और करनी में थोड़ा फर्क हो जाता है। तो बाबा ने यही बात कही कि नहीं, मैंने जो सुना कि ऐसे ऐसे हापुड़ में हुआ, मैंने कहा ठीक है। बाबा ने कहा मैंने एक जीवन का एक लक्ष्य बना दिया है कि जिस प्रकार से 5000 वर्ष पहले स्थापना हुई थी उसी प्रकार से अभी भी स्थापना हो रही है। तो इस प्रकार से ये स्थापना अभी भी ऐसी हो रही है, उसके आधार पर क्या हुआ कि वो लोग ने मतलब बाबा मम्मा ने अपने जीवन में कोई भी टेंशन नहीं रखा। हम भी, हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान की कमी कहाँ है, ज्ञान के लिए बुलाया जाए तो सभी आकर के लंबे चौड़े भाषण भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, परंतु ज्ञान की जीवन में धारणा जो होनी चाहिए, धारणा हमें, हम लोग पीछे हट जाते हैं। मम्मा और बाबा वो धारणा के परीक्षा में बहुत पास हो जाते हैं। और उसके कारण क्या हो गया, बाबा ने जब बताया कि जैसे 5000 वर्ष पहले स्थापना हुई थी ऐसे अभी हो रही है, इसलिए बाबा को उसका कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी प्रकार की चिंता नहीं, कोई भी मन में शंका नहीं। जो भी होगा, जैसे भी होगा, होने वाला जो होगा उसको तो कोई टाल भी नहीं सकता है, परिवर्तन भी नहीं कर सकता है। तो ये बात हम सबको सीखने की है कि जीवन को सफल बनाना है तो धारणाओं को जीवन का अंग बना देना चाहिए, और अंग के आधार पर कारोबार में इसकी मदद भी मिल सकती है। फिर क्या हुआ, हम लोग दूसरी बात करते हैं स्पेकुलेशन की बात, ये ऐसा होगा ऐसा हो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा चिंतन करते हैं। मेरे को क्या हुआ, दूसरे दिन बाबा ने मुझे बुलाया, कहा कि तेरे मन में बहुत प्रश्न है, तुमने बहुत डिबेट किया है बहनों के साथ, तो तुम मातेश्वरी जी के साथ तुम और उषा बैठो और मातेश्वरी जी को जो भी प्रश्न है आप पूछो और उनसे मातेश्वरी जी से समाधान ले लो। हमने कहा भले आप कहते हो तो बैठते हैं, बाकी अभी हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं, पहले 61 पहले था, अब वो सब प्रश्न जो है दूर हो गए हैं। हम फिर भी बाबा ने कहा बैठो तो बैठने से कई प्रकार के फायदे हो जाएंगे। तो दूसरे दिन मतलब उसी दिन शाम को मातेश्वरी जी के साथ बैठना हुआ हमारा और उषा का। तो हमने मम्मा को मातेश्वरी जी को पूछा कि हमको तो और कोई प्रश्न नहीं है, पर एक बात अभी तक समझ में नहीं आई है कि आप सब हम सबको यही बताया गया है सेंटरों के ऊपर कि ये जो संदेशी जो है ध्यान में जाती है, ये 61 की बात है, आज की दुनिया की बात नहीं, आज तो बहुत कुछ ज्ञान सिंप्लीफाइड और क्लैरिफाइड हो गया है, परंतु उस टाइम पर तो कई बातें इनकम्प्लीट थी। तो इसे इनकम्प्लीट एक बात थी कि ये ध्यान में बहनें कैसे जाती हैं, उस टाइम पर यही मानते थे कि बहन जी जो होती है उनकी जो ध्यान में जाती है उनका आत्मा जो है शरीर छोड़ करके वो सूक्ष्म वतन में जाती है, और सूक्ष्म वतन में जाकर के अव्यक्त बाप दादा से मिल करके आती है और संदेश लेके आती है, वहाँ भोग खिला करके आती है, आदि आदि बातें थी। तो मैंने मातेश्वरी जी को एक ही सवाल पूछा कि ये आत्मा शरीर छोड़ करके कैसे जा सकती है, क्योंकि एक बार शरीर छोड़ा तो शरीर के जो भी अंग है, जो भी ब्लड का फ्लो होना, हृदय का धड़कन होनी चाहिए, सारी जो भी बातें जो है, जब तक आत्मा शरीर में है तब तक सारा कारोबार चलता है। आत्मा जैसे शरीर छोड़ देंगी तो ये शरीर का कारोबार कैसे चलेगा, और अगर वो शरीर का कारोबार बंद हो जाए तो आत्मा उसमें प्रवेश करे तो शरीर कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेगा। मातेश्वरी जी ने कहा कि अब तक तो हमको यही समाचार संदेश ज्ञान मिला हुआ है कि संदेश ही जाती है, आप एक प्रश्न जो है रात को बाबा को सुना देना। तो रात को फिर हमने बाबा का रात की क्लास में बाबा से हमने पूछा कि बाबा ये संदेशी कैसे जाती है वतन में, क्या करती है, उस टाइम पर उनके शरीर की अवस्था क्या होती है। तो बाबा ने कहा कि ठीक है बच्चे, मैं कल सुबह बाबा को ये बाबा की मुरली में इस प्रकार से सब बातों का जवाब दूंगा। तो इस प्रकार से मातेश्वरी जी ने कोई भी प्रकार का स्पेकुलेशन नहीं किया। बाबा हम बच्चों को सिखाते भी है कि कई बार आपके सामने बड़े बड़े प्रश्न आते होंगे, हम लोग क्या करते हैं, खुद ही इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं, और बाबा कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि ये बात जो है हमारे बड़ों से पूछिए, बड़ी दीदी से पूछिए, बड़ी बहन जी से पूछिए, कहीं जरूरी होता तो यज्ञ से भी पूछिए, इस प्रकार से पूछने को कहते हैं। और ऐसा नहीं कि आप स्पेक्युलेट करके आप खुद ही जवाब दे दो, क्योंकि कई बार हम तो त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं, और त्रिकालदर्शी नहीं होते ऑम्निसिएंट भी नहीं होते, इसके कारण हमारा जवाब वास्तविक जवाब न भी हो सकता है। और उसके कारण हम सबको बाबा कहते भी है कि आप अपने बड़ों से राय करके कारोबार कीजिए तो अच्छा होता है, बाकी हम अपने पांव पर खड़े रह करके कारोबार करते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो ये मातेश्वरी जी के जीवन से हमने सीखा कि हमने इतना गहन प्रश्न पूछा कि संदेशी का रोल क्या है, कैसे जाती है, कैसे आती है, उसके बारे में स्पेक्युलेट किए बिना उनको कहा कह दिया कि बाबा इसके जवाब दे देंगे। तो इस प्रकार से ये भी एक ब्रह्मा से मातेश्वरी जी सीखने का मिला। मातेश्वरी जी से दूसरा भी हमने एक बात सीखी, क्योंकि आपको मालूम रहे मातेश्वरी जी हमारे साथ में हमारे लौकिक घर में 16 या 18 मास रहे हुए थे। पहले 8 मास रहे 62-63 में। तो हमारे पास दो घर थे, पुराना घर भी था और नया घर भी था। तो हम नए घर में मातेश्वरी जी को दे दिया और पुराने घर में हम रहते थे। उसके बाद मातेश्वरी जी को ऑपरेशन हुआ अप्रैल 1964 में। उस टाइम पर भी मातेश्वरी जी को बुलाया बॉम्बे जनवरी 1964 में। तो मातेश्वरी जी आए हमारे घर में रहे और उसके आधार पर उसके बाद उस टाइम पर 4 मास रहे, फिर आबू गए, फिर 2 मास आए, फिर 2 मास गए, बेंगलोर में गए, इस प्रकार से गए, फिर पुणे गए, फिर पुणे से बॉम्बे में आए 18 अप्रैल को बॉम्बे में आ गए और 19 अप्रैल को डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बताया कि उनको कैंसर जो है बहुत गॉड स्पीड फुल स्पीड से ये जो कहते हैं फेफड़े कहते हैं लंग्स कहते हैं उसकी ओर जा रहा है और उसके कारण उन्होंने कहा कि इनको अभी आराम करने की जरूरत है, उनको बोलना करने का काम करना चाहिए। और उसके कारण क्या हो गया, 20 अप्रैल को मातेश्वरी जी का लास्ट क्लास हुआ और उसके बाद उनको बंद कराया गया कि आपको अभी नहीं क्लास कराना है, नहीं बोलना है। उसके बाद मातेश्वरी जी की ट्रीटमेंट होती रही, तबियत बिगड़ती रही। 4 जून को फिर बॉम्बे से आबू में उनको ट्रेन में लाया गया, आखिर से यहाँ आए। और उसके बाद आप जानते हैं 24 तारीख को मातेश्वरी जी ने अपना ये पार्थिव शरीर जो है छोड़ दिया। तो इस प्रकार से मातेश्वरी जी ने अपने जीवन को सफल किया। एक बात मैं बताऊं, एक बार अनुभव किया, हमारे पास मातेश्वरी जी ऑटोनो मेंशन सेंटर पर बैठे हुए थे और कानपुर से मातेश्वरी जी को निमंत्रण आया, बहुत ही सुंदर हृदय के उद्गार से भरा हुआ वो कानपुर का निमंत्रण था, बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर था कि जब वो क्लास में वो निमंत्रण सुनाया गया तो 95% बहन भाई जो क्लास में बैठे हुए थे इन सब की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। तो हमने समझा कि हम लोगों को भी निमंत्रण तो मातेश्वरी जी को था और उनको सुनते हुए भी हम लोगों की आंखों में इस प्रकार से आंसू आ गए। तो मातेश्वरी जी को फिर मातेश्वरी जी ने कहा कि रमेश कितना भी आप मेहनत करो इस आंखों से आंसू नहीं बहेंगे। हमने कहा क्यों नहीं बहेंगे, हमने जीत किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वही निमंत्रण टेप रिकॉर्ड के अंदर घुमा घुमा करके फिर से वही निमंत्रण सुनाया, परंतु मातेश्वरी जी की आंखों से बिल्कुल कोई भी प्रकार का बूंद के रूप में आंसू के रूप में पानी नहीं बहा। तो हमने उनसे पूछा कि ये क्या है, ये क्यों आपका ऐसा आपने बना दिया है अपने जीवन को कि एक आंखों से प्रेम के आंसू भी नहीं बह सकते। तो मातेश्वरी जी ने पुरानी बात याद दी कि एक बार कराची में जब रहते थे तो कराची में बाबा जो है क्लिफ्टन पर रहते थे, ये दादी और बहने जो अलग अलग मकान लिए हुए थे, सोल्जर बाजार में रहते थे, ऐसे अलग अलग स्थानों पर रहते थे। और उसके कारण एक दिन रात को मातेश्वरी जी को बाबा को मिलने की बहुत तमन्ना हुई और बाबा के साकार बाबा को मिलने की तमन्ना में उनकी विरह में उनकी याद में प्रेम के आंसू इतने बहाए कि जो उनका तकिया जो था, पीलो जो था, वो भी काफी आंसुओं से भर गया। तो दूसरे दिन सुबह बाबा को मालूम पड़ा कि कल रात को मातेश्वरी जी ने बहुत ही प्रेम भरा व्यवहार किया और आंसू आदि से अपने बाबा को याद किया हुआ था। तो बाबा ने मातेश्वरी जी को बुलाया और मातेश्वरी जी को एक बात कही जो हम लोगों ने भी सुनी हुई, हजारों बार मुरली में सुना हुआ है, परंतु हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको जीवन में धारण नहीं करते। आप भी यहाँ भी अभी आए हुए हो, इस भट्टी के अंदर आए हुए हो, बहुत सी बातें आपको बताई जाएंगी, इतनी बातें बताई जाएंगी, इसको धारण करो तो पुरुषार्थ सचमुच तीव्र हो सकता है। परंतु क्या होता है कि हमारे विचारधारा में और हमारे व्यवहार में, विचार और व्यवहार में फर्क हो जाता है। मातेश्वरी जी के जीवन में यही था कि विचार और व्यवहार एक समान था। तो बाबा ने जब उनको कहा कि बच्ची ये इसमें से आंसू नहीं बहना चाहिए, कल रात को जो तूने आंसू बहाया बाबा की याद में वो नहीं ठीक नहीं था, तो मम्मा मातेश्वरी जी ने बाबा से वायदा किया कि आज से इन आंखों में से कभी भी आंसू नहीं बहेंगे, प्रेम के आंसू हो या दुख के आंसू हो, सुख के आंसू हो, कोई भी प्रकार का आंसू जो है इस आंखों से नहीं बहेगा। तो मम्मा ने कहा, मातेश्वरी जी ने हमको कहा कि तब से बाबा से जो मैंने वायदा किया है तब से मैंने इस वायदा का पूरा ही पालन किया हुआ है, और आज तक वो नियम के आधार पर, वो वायदे के आधार पर कुछ भी हो जाए, कैसे भी परिस्थिति आ जाए, क्या क्या हो सकता है, अनेक प्रकार की बातें हो जाए पर तो आंख से आंसू नहीं बहेगा। और हमने देखा मातेश्वरी जी की जो अप्रैल मास के बाद मई महीने में जो बॉम्बे में उनकी जो हेल्थ थी बहुत ही कष्टदायक थी, उनको लंग्स में श्वास लेने की तकलीफ होती थी, श्वास नहीं ले सकते थे, सोने के लिए भी सो नहीं सकते थे, बैठे रहते थे, बैठे करके तकिया जो दो तीन रख करके उसके ऊपर ऐसा सिर करके नींद लाने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार से हमने उनको देखा था और ऐसी घड़ियां थी उनकी कि शरीर की कष्ट इतना था परंतु फिर भी अपने प्राण जो है, वचन जो है उसके ऊपर वो फिक्स थे, और इसके कारण जो भी वचन दिया, जो कहते हैं ना प्राण जाए परंतु वचन न जाए, इस प्रकार का जो रामायण के अंदर भी जो गाया हुआ है, इस प्रकार का मातेश्वरी जी का जीवन था। और मातेश्वरी जी को बताया गया था कि अभी आपका शरीर थोड़े समय के लिए ही है, तो भी इन्होंने, बाकी किसी को मालूम पड़ जाए कि हम थोड़े दिन के लिए मेहमान हैं तो क्या क्या कर देते हैं, आपको मालूम होगा कहीं इस प्रकार की नॉवेल्स भी होती है, वार्ताएं भी आती है जिसके अंदर उसको कहा जाता है कि तुम्हारा जीवन अभी 24 घंटा में है, तो 24 घंटे में क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, किसको करना है, याद करना है, वो सारा ही याद करता रहता है और उसके आधार पर प्लानिंग करता है 24 घंटे के अंदर। मातेश्वरी जी ने तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं किया, जो भी होगा जैसे भी होगा इस प्रकार से हो जाएगा। हमको याद है 4 जून को मातेश्वरी जी जब बॉम्बे से आबू आने के लिए निकलने वाले थे, दादी प्रकाशमणि, दादी ब्रजेंद्रा ये सब आए थे विदाई देने के लिए मातेश्वरी जी को, उस टाइम पर हमने उस दिन एक रिकॉर्ड लाया था, उस दिन नया नया गीत बना हुआ था, वो गीत का सार, गीत मैं समझता था उसका सार क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, वो उसमें गीत में था कि आप लोगों ने भी सुना हुआ होगा कि वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, वो जो मुकेश का गाया हुआ था। तो मम्मा जी के मातेश्वरी जी को अंदर कमरे में मैंने मम्मा के साथ योग किया, बाहर प्रकाशमणि दादी को बताया कि ये गीत है, तो दादी ने कहा रमेश ये गीत, ऐसा गीत क्यों तुमने लाया है, क्या हो गया, क्या है रहस्य? मैंने कहा रहस्य कुछ नहीं है, ये खाली गीत आया हुआ है, गीत लाया हुआ है, आप सुनाइए। तो इस प्रकार से गीत सुनाया हुआ था और गीत सुना करके 6 मिनट तक वही गीत रिपीट करके मातेश्वरी जी से विदाई लिया, और विदाई लेकर के कारोबार किया, उनको स्टेशन पर लेके गए, उनको व्हील चेयर में ट्रेन में बिठाया और इस प्रकार से विदाई लिया, और हमने भी साथ में विदाई लेकर के मातेश्वरी जी के साथ गया, मैं भी गया, और अहमदाबाद के अंदर वहां पर अब उस टाइम पर अपना सेवा केंद्र नहीं था, तो इसलिए मातेश्वरी जी की तबीयत के हिसाब से कुछ भी चाय आदि कुछ जो भी पीते थे वो उस प्रकार से लाने की बात कही, तो वहां पर एक बटुक भाई करके था, वो बाबा का स्नेही था और उनके घर में ही बहने जाकर के रहती थी, उनको हमने पत्र लिखा था, फोन भी किया था कि ऐसे मातेश्वरी जी उनकी तबीयत इस प्रकार से है तो आपको उनके लिए सुबह चाय आदि का जो भी बंदोबस्त है आप कर सकते हो, उस प्रकार से उनको किया था। और जब वो आया लेकर के तो बाकी तो लिया, मेरे को दूध लेने के लिए कहा, मैंने कहा मैं तो अपने आपके घर का नहीं पीता हूँ, तो मातेश्वरी जी ने हमको कहा कि आप क्यों नहीं लेते हो. मैंने कहा कि हमारे पास, हमने हमारे गुजरात में अभी इस तक इतनी सेवा ही नहीं किया है कि आप इतनी तबीयत नाजुक होते हुए भी आप अहमदाबाद क्रॉस करते हो और हम आपको कुछ नहीं यज्ञ का पवित्र भोजन या पवित्र अन्न या तो दूध आदि या चाय आदि दे सकते हैं. तो मेरी आंखों में भी पानी आ गया. तो मम्मा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है रमेश जी. मम्मा ने उसे वरदान दिया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि अहमदाबाद ही इस प्रकार से जो भी क्रॉस करने वाले हो गए रास्ता क्योंकि अहमदाबाद तक ब्रॉड गेज थी और अहमदाबाद से आबू मीटर गेज थी जो सबको ट्रेन बदली करनी ही पड़ती थी. तो मम्मा ने कहा कि अहमदाबाद में सबको इस प्रकार की सुविधा मिल जाएंगी और इस प्रकार से मम्मा ने जो वरदान दिया उसके आधार पर अहमदाबाद के अंदर सेवा केंद्र भी खुल गया और आज तो आप सब जानते हैं कितनी अच्छी सेवा अहमदाबाद में हुई. मैं ऐसा ही हमेशा ही मानता हूं कि गुजरात की जो ईश्वरीय सेवा जो है ये गुजरात की ईश्वरीय सेवा मातेश्वरी जी के वरदान के आधार पर ही हुई कि कैसे अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म पर इन्होंने हम अहमदाबाद की भविष्य की सेवा को ध्यान में रखते हुए ये वरदान दिया कि ऐसा ऐसा हो सकता है. और शुरू में तो यही हुआ था अहमदाबाद के अंदर सेवा केंद्र से जो भी क्रॉस करते थे उनको इन्फॉर्म करते थे. वो लोग चाय नाश्ता आदि सब लेके आते थे. आप सबको मालूम होगा जो पुराने भाई बहन है जब अहमदाबाद में क्रॉस करना पड़ता था. मुझे याद है एक बार हुबली के बहन भाई आ रहे थे. 400 लोग थे एक ट्रेन में 400 लोग. उन्होंने 400 लोगों ने इन्फॉर्म किया था कि हम लोग 400 लोग आ रहे हैं इसके लिए खाना पीना लाना. तो बराबर सरला बहन ने रात को 2 बजे से उठ करके अपने साथियों को तैयार कर करके क्योंकि सुबह सुबह गाड़ी आ जाती थी और फिर 1-1.5 घंटे में सामने दिल्ली में या तो जनता में जाना होता था. तो उसके हिसाब से इतना जल्दी चाय बना करके लाना सबके लिए. कोई चाय पीता था, कोई कॉफी पिएगा, कोई दूध पिएगा, कोई क्या खाएगा, कोई क्या खाएगा. इस प्रकार से अनेक प्रकार की बातें बना करके अहमदाबाद में जो मिलती थी उसका कारण मातेश्वरी जी है. और इस प्रकार से मातेश्वरी जी बॉम्बे से आबू में भी आए और इस प्रकार से बाद में तो हमारा मिलना नहीं हुआ क्योंकि हमने कहा ना कि जो जाने वाले हो सके तो लौट के आना. शुरू शुरू में तो हम लोग मानते थे कि मातेश्वरी जी दोबारा इस अपने नए शरीर में नए स्वरूप में आएंगे, हम सबको मिलेंगे करेंगे, हम सब वही बात मानते रहते थे. परंतु बाबा ने बाद में बता दिया कि अभी आप उसको नहीं मिल सकेंगे. तब तक हम मानते थे कि मिल सकेंगे. परंतु 1971 में जब हम अमेरिका में थे, अमेरिका में पिट्सबर्ग में थे, तब बाबा की मुरली अव्यक्त मुरली आई और उस अव्यक्त मुरली में पहली बार बाबा ने स्पष्ट किया था कि उसी नाम रूप देश काल के आधार पर या उसी परिचय के आधार पर आप मातेश्वरी जी से नहीं मिल सकेंगे. वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिल में धक्का लगा कि ये क्या हो गया. हम तो मानते थे कि मातेश्वरी जी अपना नया शरीर लेकर के आएंगी और आकर के यज्ञ का कारोबार, यज्ञ का जो भी भविष्य का निर्माण किया हुआ जो भी बातें जो होगी उसको संभालेंगी और यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे. परंतु बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने 71 में बता दिया कि मातेश्वरी जी का अपने उस रूप में उस धन का पार्ट पूरा हो गया. तो इस प्रकार से मातेश्वरी जी के जीवन के अंदर अनेक प्रकार की बातें हुई. उसको बाबा के आधार पर इन्होंने कैसे सफल किया. मैंने कहा ना कि एक साधारण घर की कन्या, साधारण पढ़ाई पढ़ने वाली कन्या जो है और साधारण धन का सहयोग देने वाली कन्या, साधारण पढ़ाई करने वाली कन्या, वो कैसे आगे बढ़ करके जो भी उनसे पहले आए हुए थे बहन भाई उन सबसे आगे जाकर के अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाने का जो प्रयत्न किया, जो पुरुषार्थ किया, वही बहुत सराहनीय है. और इसलिए हमेशा ही मेरे मन में मातेश्वरी जी के लिए विशेष स्थान है कि कैसे हम भी. मैंने आपको बताया ना बाबा के जीवन में तो बाबा के पास तो सब कुछ था, बड़ा परिवार था, धंधा था, व्यवहार था, अनुभव था, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ संपर्क था. इस प्रकार से उनका बहुत ही बड़ा कारोबार, विशाल कारोबार, विशाल जीवन, विशाल अनुभव था. उसके कंपटीशन में मातेश्वरी जी सहज रूप में, साधारण रूप में, और साधारण घर से निकल के भी इसने ओवरटेक कर दिया। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि मम्मा ने हमको भी ब्रह्मा बाबा को ओवरटेक कर दिया, कारण कि वो कुमारी थी और बाबा अधर कुमार थे, इसके कारण कुमारी ने बाबा को भी ओवरटेक कर दिया। इस प्रकार से बाबा उनकी महिमा करते हैं, और इसलिए बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में गाया हुआ है पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। आप जानते हैं इसका कारण, इस रहस्य यही है कि बाबा मम्मा ने बाबा को कैसे ओवरटेक कर दिया और कैसे आगे का श्रेष्ठ पद प्राप्त किया। तो इस प्रकार से ऐसे मातेश्वरी जी जी हुए, बहुत कुछ उनके जीवन से सीखने को मिला। मैं आपको 18 मास में जो सीखने को मिला वो कैसे मैं आपको बताऊं। कई बार रात को, रोज रात को उनसे बैठते थे। एक दिन आपस में मिलने के लिए कोई आए हुए थे, तो इसके कारण रात को 12:30 बज गए, 12:30 बज गए। और फिर मेहमान गए, उसके बाद मातेश्वरी जी अपने कमरे में जा रहे थे, तो मैंने कहा मातेश्वरी जी को, आज तो आप 12:30 तक जागे हुए और अभी जाके आराम करेंगे, तो आज आप 2:30 बजे तो नहीं उठेंगे ना, कितने बजे उठेंगे? तो मातेश्वरी जी ने मुझे बहुत सुंदर एक सवाल पूछा, जो हम सबके जीवन का काम का है प्रश्न, क्योंकि हम सब थोड़ी सेवा करते हैं ना, हाँ, तो थोड़ा देह अभिमान, थोड़ा देह का थकान, ये सब हमारे सामने आ जाता है, और उसके कारण क्या होता है, दूसरे दिन का पुरुषार्थ थोड़ा ढीला हो जाता है, थोड़ा पुरुषार्थ कमजोर हो जाता है, पुरुषार्थ की स्पीड इतनी नहीं रहती है, उसकी गति प्रगति पीछे रह जाती है। मातेश्वरी जी ने मुझे एक ही सवाल पूछा कि रमेश जी बताओ कि बाबा ने कब कोई मुरली में ऐसा कहा है कि जिस दिन रात को 12:30 बजे तक सेवा किया हो तो दूसरे दिन सुबह का योग नहीं करने का, मुरली नहीं पढ़ने का, आराम करने का, इस प्रकार का कोई भी मुरली में कहा है? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं है। तो सुना नहीं है तो फिर क्यों ऐसा करते हो? हमने कहा हम लोग क्या करते हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम समझते हैं कि बाबा कितनी रात को 12:30 बजे तक सेवा किया है तो दूसरे दिन सुबह थोड़ा हमारी दिनचर्या जो होती है वो उसके अंदर ऊपर नीचे कर रहे, तो अर्जा नहीं है, मतलब हम ही खुद ही अपने कारोबार के अंदर अपने ही निर्णय के आधार पर अपना कारोबार में ऊपर नीचे बातें कर देते हैं। मातेश्वरी जी ने कहा कि नहीं, मैं तो 2:30 बजे जो उठने का है मेरा, तो वो नियम वो रहेगा ही सही, और अंत तक रहा, अंत तक हमारे घर में 4 जून तक रहे, तब तक जितनी भी बीमारी होते हुए भी रोज 2:30 बजे उठने का और कारोबार करने का, योग करने का आदि आदि जो भी कारोबार था वो रेगुलरली करते रहे। एक बार मातेश्वरी जी का गले में टॉन्सिल का ऑपरेशन था, तो टॉन्सिल का ऑपरेशन था तो हम लोगों ने वहां डॉक्टर एक डॉक्टर है उनसे काम करवाया, ऑपरेशन करवाया। उसने कहा था कि 2 दिन तक आपको बोलना नहीं है, समझो सोमवार को ऑपरेशन हुआ और 2 दिन तक बोलना नहीं था, परंतु तो क्या करें, उसी दिन रात को उषा को एक गीत गाने का था, दूसरे दिन फंक्शन था राखी का या तो शिवरात्रि का फंक्शन था, मैं समझता हूँ शिवरात्रि का ही फंक्शन था, ऐसा कुछ था, तो उसमें वो एक गीत गाना था जो महात्मा गांधी की आश्रम भजनावली है उसमें वो गीत है, और मथुराबेन खरे ने गाया हुआ है, और जो गीत मातेश्वरी जी करांटी और हैदराबाद में भी गाते थे, तो इसलिए उनका ट्यून, उनका शब्द स्वरूप जो भी है, जो है वो संगीत जो है वो मातेश्वरी जी को आता था, मातेश्वरी जी को हारमोनियम भी आता था, सितार भी आता था, तो इस प्रकार से मातेश्वरी जी को हमको उषा ने कहा कि ये गीत आपका है, आप जानते हैं उसका ट्यून, हमको स्वर हमको बता दो तो हमको कल फंक्शन में गाना है। तो हमने ना किया, मातेश्वरी जी को नहीं 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 आपको डॉक्टर ने मना किया है, आज सुबह ही आपका तो टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ है, और टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ है आप कैसे ये गीत गा करके उषा को बता सकते हैं? मातेश्वरी जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, सेवा जो है तो सेवा तो करनी ही चाहिए, शरीर का कोई भी समस्या हो उसमें क्या हो गया, और मातेश्वरी जी ने वो गीत जो है कि चढ़ो रे मोहे आज अलौकिक रंग, इस प्रकार का एक बहुत सुंदर गीत है, वो मथुराबाई खरे का महात्मा गांधी के आश्रम भजनावली में था और मातेश्वरी जी खुद भी वो गीत गाते थे, वो मातेश्वरी जी ने गीत गा करके सुनाया। इस प्रकार से होता था। मातेश्वरी जी को डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन के बाद के रोज सुबह उनको पैदल करने के लिए लेके जाने का, तो बॉम्बे के अंदर पैदल कर लिए बाबा को लेके जाते थे, तो बाबा को जब पहले दिन हम पैदल लेके गए ना तो वहां पर कमला नेहरू पार्क है, कमला नेहरू पार्क के अंदर एक लॉन्ग बूट है जो साकार बाबा को हम लोग लेके जाते थे घूमने के लिए, तो साकार बाबा को दिखाया था और साकार बाबा वो लॉन्ग बूट के अंदर सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गए और ऊपर से देखा और उसके आधार पर आप लोगों ने साकार मुरली में पढ़ा होगा कि ब्रह्मा बाबा जो है ना वो भी एक लॉन्ग बूट है जिसके अंदर जो है परमात्मा की प्रवेशता होती है। इस प्रकार का उनका जो मुरली का भाव जो था वो मातेश्वरी जी को और हम सबको याद था, हमने मातेश्वरी जी को बताया कि ये लॉन्ग बूट वही है जिसकी यादगार बाबा के मुरली में आई हुई है कि ब्रह्मा बाबा भी लॉन्ग बूट है और उनके तन में जाकर के इस प्रकार से ऊपर चढ़ गए। तो मातेश्वरी जी ऊपर चढ़ करके मातेश्वरी जी ने भी कहा जो बाप ने किया वो मैं भी कर रही हूँ। इस प्रकार से बहुत अच्छी इससे बात हो गई। एक बार हम मातेश्वरी जी को पुणे लेके गए थे, पुणे लेके गए तो उस जमाने में पुणे से थोड़े दूर 18 किलोमीटर दूर या ऐसा कुछ डिस्टेंस था, वहां पर खड़कवासला का डैम था, वो खड़कवासला का डैम टूट गया था तो वो दिखाने के लिए हम लेके गए मातेश्वरी जी को। सुबह सुबह में निकले घूमने के लिए तो किसी को बताया भी नहीं सेंटर पर, ना कुछ नाश्ता आदि साथ में लिया और मम्मा को मातेश्वरी जी को हमने पूछा कि हम खड़कवासला चले, वहां पर जो डैम का जो डैम टूटा हुआ है वो टूटा हुआ डैम देखेंगे। तो मातेश्वरी जी ने कहा चलो हम चलते हैं। हम चले चले तो वहां थोड़े डैम के करीब आधा पौना किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती थी और बाकी थोड़ा आधा पौना किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। तो हम सब तो उतर गए, गाड़ी को पार्क करके रखे और जमुनाबेन और मातेश्वरी जी जो जमुनाबेन जो मातेश्वरी जी के ब्रह्मणी थे वो जमुना मातेश्वरी जी को लेकर के आ रही थी और मैं और उषा फर्स्ट फर्स्ट चल करके आगे जा रहे थे। थोड़ी दूर गए तो उषा ने मेरे को कहा कि देखो मातेश्वरी जी तो स्लो चलते हैं, पीछे रह गए, हम भी उनके साथ रहे तो अच्छा है। तो जैसे मातेश्वरी जी नजदीक आए तो हमने कहा कि मातेश्वरी जी हम तो बाबा के साथ घूमते थे पैदल करते थे तो बाबा तो बहुत फास्ट चलते थे और आप तो बहुत स्लो चलते हो, आप तो बाबा से भी शरीर के अंदर आयु के हिसाब से आपकी आयु कम है, मतलब जुवान है, बाबा तो बुजुर्ग है, तो फिर ये कैसे फर्क पड़ा, आप क्यों फास्ट नहीं चल सकते हो? आप सबको इसका जवाब नहीं आता होगा। मातेश्वरी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मातेश्वरी जी ने कहा कि देखो बॉम्बे से पुणे आते हैं ना तो चढ़ाई चढ़नी होती है, चढ़ाई चढ़नी होती है तो क्या होता है मालूम है, ट्रेन के अंदर एक दूसरा इंजन भी लगा देते हैं और डबल इंजन के द्वारा ट्रेन जो है वो चढ़ाई चढ़ जाती है। तो इस प्रकार से मातेश्वरी जी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को तो अर्जा नहीं है क्योंकि उसके शरीर में तो डबल इंजन है, आप समझिए डबल इंजन माना, मातेश्वरी जी ने कहा उसके शरीर में तो डबल इंजन है इसलिए वो तो फास्ट चल सकते, जैसे पुणे बॉम्बे से पुणे आती है इंजन दो इंजन होता है तो ट्रेन फटाफट चढ़ जाती है ऊपर। इस प्रकार से मम्मा ने बताया कि बाबा का भी डबल इंजन वाली है आत्मा है शरीर है और मैं तो सिंगल आत्मा वाली हूँ इसलिए मुझे तो चढ़ने में और मेरा शरीर भी थोड़ा भारी है तो इसके कारण मुझे चढ़ने में टाइम लगेगा और बाबा फास्ट चढ़ेगा तो इसलिए बाबा बाबा है मैं हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर हर बात का जवाब इस प्रकार से देना चाहिए कि जिसके कारण सामने वालों को भी उसका सेटिस्फेक्शन हो सके, इस प्रकार का ऐसा जवाब होना चाहिए। तो इस प्रकार से मातेश्वरी जी ने भी खड़कवासला डैम देखा टूटा हुआ कैसे था वो देख करके सारी बातें बताई। फिर मातेश्वरी जी ने पूछा कैसे होता है क्या होता है कैसे डैम बनेगा आदि आदि वहां के ऑफिसरों आदि से मिल करके। बहुत कुछ मातेश्वरी जी ने वो डैम को देख करके कई कई बातों के सवाल आदि पूछे, तो ये भी हमको लगा कि बाबा मातेश्वरी जी जब पूछना चाहते हैं, जब जानना चाहते हैं, तो अनेक प्रकार की बातों के आधार पर उनसे पूछ लेते हैं जीवन और उसके आधार पर व्यवहार में भी आते हैं, और उसके आधार पर मुरली आदि जो चलाते हैं उसके अंदर भी वो बात आती है। मातेश्वरी जी से एक बहुत बड़ी बात हमको सीखने को मिली। मैंने ब्रह्मा बाबा को भी कहा था कि बाबा आप मुरली चलाते हो, इतनी गहन मुरली चलाते हो, तो आप मुरली में एक मिनट मैंने ब्रह्मा बाबा को पूछा था कि आप मुरली जो चलाते हो तो उसके पहले उसके नोट्स बनाते होंगे कि आज मुझे मुरली में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने कहा बाबा मेरे को मुझे आपके वो नोट्स दे दो तो अच्छी बात है। तो बाबा ने कहा क्यों तुमको नोट्स की क्या जरूरत है। मैंने कहा कि आप मुरली चलाते हो तो मुरली लिखने की भी इच्छा होती है और साथ साथ आपके मुख से किस प्रकार से वाणी का प्रवाह निकलता है, कैसे आप मुरली चलाते हो, वो देखने की भी इच्छा होती है। तो देखता हूँ तो लिख नहीं सकता हूँ, लिखता हूँ तो देख नहीं सकता हूँ, तो इसलिए आपने अगर नोट्स पहले से बनाई हुई हो, क्योंकि मैं भी पहले पंडित के रूप में था तो पंडित के रूप में प्रवचन जो करता था ना तो उसके नोट्स बनाता था। तो मैंने कहा हम भी नोट्स बना देते हैं और आप इतनी गहन मुरली चलाते हो। तो बाबा ने कहा संतरी दादी से पूछा कि ये नोट्स क्या होती है। संतरी दादी ने भी मुझे पूछा ये नोट्स क्या होती है। मैंने कहा ये नोट्स कोई पैसे के नोट्स की बात नहीं है, ये तो पॉइंट्स के नोट्स उसकी बात है। और फिर समझा कि ऐसे ऐसे नोट्स में पहले से विचार नक्की करके कि इसके ऊपर मुझे आज मुरली चलानी है, तो उसके अलावा प्रिस्क्राइब करते हैं कि आज की मुरली में ये बात कहूंगा। तो फिर बाबा ने समझा तो बाबा ने कहा कि नहीं मुझे क्या मालूम, वो तो ज्ञान का सागर जो है वो आकर के सुना के जाता है। और मैंने कई बार मुरली में कहा है कि पहला पहला स्टूडेंट मैं हूँ, अर्थात इस मुख से बाबा बोलते हैं और इस कान से वो उस मुख से अव्यक्त बाबा बोलते हैं और इस कान से मैं सुनता हूँ, मैं बाबा का पहला नंबर का स्टूडेंट हूँ, इस प्रकार से मैं सुनता हूँ, इसलिए मुझे क्या मालूम कि आज बाबा मुरली में आकर के क्या बताने वाले हैं। और वो तो ज्ञान का सागर है, उसको नोट्स की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमने मातेश्वरी जी जब हमारे घर पे 8 मास रहे पहली बार, तो हमने उनको पूछा कि आप मुरली जो चलाते हो तो आप मुरली की पहले नोट्स बनाते हो, क्या करते हो, कैसे इतनी सुंदर मुरलियां चलाते हो, कैसे इतने सुंदर लोगों को कन्विंस करने के लिए आपकी विचारधारा होती है। तो मातेश्वरी जी ने बहुत अच्छी बात सिखाई मुझे, मैंने वो जीवन में धारण किया और तब से मेरे को भी बहुत काम में आती है वो बात। मातेश्वरी जी ने कहा कि नहीं रमेश जी मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ना मैं नोट्स लिखती हूँ, नहीं कुछ करती हूँ, ना उसके ऊपर चिंतन करती हूँ, मैं तो योग में रहती हूँ। और जब बाबा के क्लास के अंदर मैं जाती हूँ तो योग के समय पर बाबा को कहती हूँ, मामा ने कहा कि बाबा ये तन आपका है, ये तन मेरा है, परंतु ये मन और बुद्धि ये मुख आपका है, आपको इस मुख के द्वारा जो भी बुलाना हो वो बुलाइए, मुझे क्या मालूम ये जो सामने क्लास में बहन भाई बैठे हुए उनको क्या जरूरी है वो मुझे मालूम नहीं है, परंतु आप तो जानी जाना ना रहे तो इसलिए क्लास में बैठे हुए जो भाई बहन जो है उनको क्या जरूरत है, उस प्रकार की बातें मेरे मुख के द्वारा आप कहलाएंगे या कहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार से मातेश्वरी जी ने कहा कि पहले से चिंतन करके मैं नहीं आती हूँ, अपनी बुद्धि को अपने मन को अपने मुख को बाबा को सरेंडर करती हूँ और उसके आधार पर मैं मुरली चलाती हूँ। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत कठिन बात है। तो मम्मा ने कहा कि नहीं रमेश जी ये बहुत आसान तरीका है, आप अगर ये कला सीख जाएंगे कि अपने आप को अपने बुद्धि को मन को मुख को इनको शिव बाबा के अर्पण कर दे करके उनके माध्यम के द्वारा उनके बने बनाए कारोबार के अंदर निमित्त बन करके आप मुरली चलाएंगे या क्रास कराएंगे तो जमीन आसमान का फर्क होगा। तो मैंने भी उसका प्रयोग किया, पहले पहले बॉम्बे में ही प्रयोग किया, और एक दिन मैंने क्लास कराया, उसके अंदर कई धारणा की बातें कही। तो और वो क्लास के पहले मैंने मन में बाबा के पास यही याद विवादी रखी थी कि क्लास के अंदर जो भी भाई बहन आए हुए हैं उनको जो भी जरूरत है उस प्रकार की बात हमारे मुख से कराना। तो मैंने क्लास कराया, क्लास कराने के बाद एक भाई मेरे पास आया, कहने लगा कि रमेश भाई देखो हमारी बहन जी जो है ना वो कोई भी बात कॉन्फिडेंशियल रखती नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहा हमने हमारी जीवन की कोई समस्या थी वो बहन जी को कही थी, और बहन जी ने कहा था ठीक है उसके ऊपर मैं विचार करूंगी आपको जवाब दूंगी, परंतु बहन जी ने मुझे जवाब नहीं दिया। और मैंने बहन जी को खास कहा था कि ये मेरी बात कॉन्फिडेंशियल रखना, और उसके बदले में क्या हुआ, जैसे कि आज आपने क्लास कराया वो मेरी समस्या के ऊपर ही कराया ऐसा लगा। इसके लिए मुझे लगा कि बहन जी ने आपको कह दिया होगा और आपके द्वारा मेरी समस्या के बारे में समाधान करने के बारे में आपको निमित्त बनाया। मैंने कहा भाई साहब मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, आपकी बहन जी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, परंतु मैंने मातेश्वरी जी से जो सीखा कि बुद्धि को सरेंडर कर देने का बाबा को, और बाबा को कहने का कि इस क्लास के अंदर जो भी भाई बहन बैठे हुए हैं उनको जो भी जरूरी है, उनके जीवन के लिए जरूरी है, जो मार्गदर्शन की जरूरत है, उस प्रकार की बातें मेरे मुख से निकलवाना। तो इस प्रकार से बाबा के कहने पर बाबा को बुद्धि सरेंडर कर दिया, और बाबा ने जो बुलाया वो मैंने बोला हुआ है। तो उसने कहा ये कैसे होगा, मैं मानता ही नहीं हूँ। अभी तक कई बार वो भाई मिलता है, कहता है कि रमेश भाई मैं आपकी बात को अभी तक भी नहीं मानता हूँ, हमारी बहन जी ने आपको बता दिया होगा। तो इस प्रकार से मातेश्वरी जी से जो सीखने को मिला वो बहुत मुझे जीवन में काम में आया। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, मैं और दादी जी फॉरेन में विदेश यात्रा पर गए हुए थे। मॉरिशियस में दादी जी की तबीयत बिगड़ गई, उनको बुखार आदि आ गया, दवाइयां दी, इस प्रकार से थोड़ी कमजोरी थी। और मॉरिशियस से हम बैठे प्लेन में और पहले पर्थ पहुंचे, पर्थ के बाद सीधा ही सिडनी पहुंचे। सिडनी जब पहुंचे तो दोपहर के 12 बज गए थे, और मातेश्वरी जी को तो लेने के लिए आए थे, अरे दादी प्रकाशमणि को जो लेने के लिए आए थे वो तो दादी को लेकर के गए क्योंकि दादी को बहुत कमजोरी थी। और मुझे एयरपोर्ट पर ही दो अखबार वालों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको जवाब दिया, जो भी बाबा के ज्ञान के आधार पर था वो जवाब दे दिया। फिर हम सेंटर पर गए, सेंटर पर जाकर के स्नान पानी किया, भोजन किया, इतने में 2:30 बज गया, और फंक्शन जो था वो 3:30 बजे था। तो हमको कहा गया कि रमेश भाई 15 मिनट में आप तैयार हो जाओ, आपको फंक्शन में जाना है। हमने कहा दादी जी का क्या प्रोग्राम है, तो कहा दादी जी 10 मिनट आराम करके आएंगे, आप चलो स्टेज पर, क्योंकि यहाँ के लोग तो बहुत पंक्चुअल है, टाइम के एकदम उसके मशीन के माफक चलने वाले हैं, 3:30 बजे शुरू ही करना होता है। तो हमने कहा ठीक है दादी जी आ जाएंगे 10 मिनट में, तो हम 10 मिनट बोल लेंगे। परंतु टॉपिक मालूम नहीं था, तो जो भाई हमको गाड़ी में लेकर के जा रहा था मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे किस टॉपिक पर बोलना है, तो कहा मुझे मालूम नहीं है, आप वहां चलो फंक्शन में, वहां मालूम पड़ जाएगा। और एक 5-स्टार होटल के अंदर बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास हॉल था, बैंक्वेट हॉल था, उसके अंदर दादी प्रकाशमणि का स्वागत का प्रवचन था, और हमारे मैं भी उनके साथ में था। होटल के नीचे गेट पर पहुंचे तो वहां दो भाई खड़े थे, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या टॉपिक है, तो कहा मुझे मालूम नहीं है, आप ऊपर जाओ, ऊपर बैंक्वेट हॉल के गेट के ऊपर दो भाई खड़े हैं, उनसे आप पूछना। ऊपर मैं गया, ऊपर गया तो बैंक्वेट हॉल के बाहर जो दो भाई खड़े थे उनको मैंने पूछा कि टॉपिक क्या है, तो कहा मुझे मालूम नहीं है। मैं स्टेज पर गया, स्टेज पर जो रोज प्रोग्राम होता है वो टाइप किया हुआ था, मैंने समझा कि उसके अंदर लिखा हुआ होगा कि आज का टॉपिक क्या है, उसमें भी लिखा नहीं था। और फिर केन भाई जो है उसने परिचय इंट्रोडक्शन देकर के कहा कि अभी रमेश भाई टॉपिक पर बोलेंगे, तो उसने भी टॉपिक नहीं बोला। इतनी भारी परीक्षा हुई। फिर स्टेज से जो पोडियम जो होता है ना, वहां से केन भाई आ रहे थे और मैं पोडियम की तरफ जा रहा था, तब मैंने केन भाई से पूछा कि भाई टॉपिक क्या है वो तो बताओ, तो उसने टॉपिक बताया। टॉपिक सुना और एक दो कदम के ऊपर तो पोडियम था, मतलब जो आप जानते हैं ना कॉन्फ्रेंस हॉल में रखते हैं टेबल जैसा ऊंचा, उस पर माइक रखते हैं, इसको पोडियम कहते हैं। तो पोडियम पर मैं पहुंचा, दो कदम के बाद तो पोडियम था और पोडियम पर जाकर के बोलना शुरू करना पड़ा। मुझे कहा गया था कि 10 मिनट में दादी जी आएंगे, तो इसलिए मैंने उस प्रकार से बोलना शुरू किया, दादी जी आ रही है आ रही है आ रहे है आ रहे आ रहे है। 10 मिनट के बदले में 2 घंटे के बाद दादी जी आए। तो 2 घंटे तक मेरे को अपना ज्ञान सुनाना पड़ा, और वो भी मेलबर्न सिडनी के वीआईपीज जो थे, इन वीआईपीज के सामने में बोलना था, कोई साधारण ऑडियंस नहीं था, ऐसे जनता, इतने पढ़ी लिखी जनता के सामने, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले दिन ही मेरे सामने ये समस्या आ गई। परंतु जब 2 घंटे तक मुझे बोलना पड़ा और मैंने बोला, तब केन भाई आदि ने कहा कि रमेश भाई आपने तो बहुत सुंदर ज्ञान सुना दिया। तब मैंने कहा उन लोगों को, ये मेरा पुरुषार्थ का फल नहीं है, परंतु मातेश्वरी जी ने जो मुझे सिखाया कि कभी भी प्रिपेयर करके भाषण करने की तैयारी करके जाएंगे तो उसमें आपके विचार होंगे और आप बाबा को बुद्धि सरेंडर करके कहेंगे कि बाबा जनता को जो जरूरी है, क्लास को जो जरूरी है, उसके आधार पर इस प्रकार की बातें मुझे टच करके बुलाना, तो उसके अंदर बाबा की टचिंग होगी, बाबा की प्रेरणा होगी, बाबा की शक्ति होगी, और आप खुद तैयारी करके जाएंगे तो उसमें आपकी शक्ति होगी, आपका मनन होगा, आपकी विचारधारा होगी। तो ये बाबा की विचारधारा और आपकी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, ये आप अनुभव करके देखना। तो हमने देखा कि जब से बाबा ने और मम्मा ने हमको ये बाबा की बात सिखाई कि बुद्धि को बाबा के पास सरेंडर कर देना, उस प्रकार से हम कारोबार करते हैं तो बहुत ही सुंदर होता है। मुझे चाहे 10 मिनट बोलना होता है, चाहे 2 घंटा बोलना होता है, इस प्रकार से नदी के माफक हमारा कारोबार जो है वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इस प्रकार से मातेश्वरी जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता रहा, मिलता रहा, मिलता रहा। हमारे पास भी रहे, रोज सुबह हम हमारे घर से वाटरलू पेंशन के सेंटर पर जाते थे, मातेश्वरी जी कितना इकोनॉमी का अवतार थे। तो पहले दिन तो हम लेके गए मरीन ड्राइव आदि से और वहां पर वाटरलू पेंशन सेंटर पर पहुंच गए। रास्ते में वापस आने के टाइम पर मातेश्वरी जी हमको पूछती है, आज आपने कितना एक्स्ट्रा रास्ता लिया, लंबा लिया मेरे खातर, शॉर्टकट क्या था वो मुझे बताओ। मैंने कहा तो शॉर्टकट तो यही था, और कोई लंबा रास्ता हमने लिया ही नहीं। कहा नहीं, शॉर्टकट होगा तो इतना जो आपने लंबा रास्ता लिया, पेट्रोल इतना जल गया, इस प्रकार से हो गया, उसके शॉर्टकट में ले जाओ मातेश्वरी जी को, शॉर्टकट में आप लेके जाएंगे तो और ही खुशी होगी। मैंने कहा नहीं मातेश्वरी जी, कोई शॉर्टकट नहीं है, यही है। तो मम्मा ने कहा कि ठीक है, मेरे कारण मेरे नाम पर इस प्रकार का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक हमने सीखा कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा खर्चा ज्यादा हो जाए तो क्या हो गया, बाबा का ही खर्चा है, बाबा का ही धन है, बाबा का ही घर है। हाँ तो क्या होता है, कभी कभी हम जो है खर्च के बारे में थोड़ा बेफिक्र बादशाह हो जाते हैं। पर मातेश्वरी जी का हमने जीवन देखा, मातेश्वरी जी जीवन के अंदर खर्च के बारे में बहुत ही ध्यान रखते थे कि यज्ञ का खर्च जो है पाई पाई जो भी है उसको बचत करके करना चाहिए, कराना चाहिए और उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। मातेश्वरी जी को मिलने के लिए भी बहुत बहन भाई आते थे बालगांव से, मातेश्वरी जी सबको मिलते थे, प्यार कर से बातें करते थे, सब कुछ करते थे, परंतु एक बात का ध्यान रखते थे कि समय के पाबंदी के अंदर जो भी मिलते थे उसको 2 मिनट 5 मिनट में पूरा कर करके मातेश्वरी जी उनको विदाई करते थे, दूसरे को मिलते थे। इस प्रकार से कैसे कम समय में भी सामने वालों को विशेष अनुभूति देने का। हम लोग क्या करते, कभी दो दो घंटे तक उनके साथ बैठे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और दो घंटे में अनेक प्रकार की बातें होती है। कहीं बातें काम की होती है, कहीं बातें फालतू होती है, कहीं बातों के ऊपर गपशप लगाते रहते हैं। मातेश्वरी जी का हमने ये जीवन देखा कि एकदम पूर्ण रूप में, सिद्ध रूप में जो भी काम करना होता है, टू दी पॉइंट करके काम करके पूरा करके समय चला जाए, इस प्रकार के मतलब समय की पाबंदी रखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए मातेश्वरी जी काम करते थे। और इस प्रकार से क्या हो गया, मैं आपको दूसरा भी बताऊं। मातेश्वरी जी का हमको कानपुर से मालूम पड़ा, कानपुर में मातेश्वरी जी थे, तो वहां पर हमको मालूम पड़ा कि मातेश्वरी जी को कैंसर का, शायद कैंसर होगा ऐसा लगता है। तो इसलिए मातेश्वरी जी को हमने बॉम्बे आबू में फोन किया हुआ है, अभी तक फोन का जवाब नहीं आया है, उसके आधार पर नक्की होगा। तो हमने कहा ठीक है, आप टिकट विकेट बुक नहीं कराना, मैं ब्रह्मा बाबा से बात करता हूं और उसके आधार पर प्रोग्राम बनाता हूं। इतने में मेरा आबू का फोन लगे, उस टाइम पर तो मोबाइल फोन नहीं थे, सब ट्रंक कॉल करने पड़ते थे। तो हमने ट्रंक कॉल बुक किया और आबू में फोन किया, उसने में तो इसके पहले कानपुर से फोन आ गया कि बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कहा है मातेश्वरी जी को आबू भेजो, और आबू भेजने के बाद बाबा उनका क्या करने का नक्की करके बताएंगे। तो हमको कानपुर वालों ने बोला कि हम तो टिकट बुक कर रहे हैं। हमने कहा नहीं, हमने भी आबू में फोन बुक किया हुआ है, हमारा फोन लग जाएगा, उसके बाद जो भी निर्णय होगा हम आपको सुनाएंगे, हम आपको सुनाएंगे, तब तक आप टिकट नहीं बुक करना, हमारा फोन लग जाएगा, हमने अर्जेंट कॉल किया हुआ है। तो इतने में बॉम्बे आबू का भी बाबा का फोन लग गया, और बाबा ने कहा कि हाँ, मैंने कहा है मातेश्वरी जी को कानपुर से आबू भेजो, फिर आबू से बॉम्बे में कहाँ जाएंगे। तो वो मेरे जीवन की बहुत ही अमूल्य घड़ी थी कि जिस घड़ी मुझे बाबा के साथ डिबेट करनी पड़ी। मैंने बाबा को कहा, बाबा आपने मातेश्वरी जी को आबू क्यों बुलाया, आबू में क्या है, यहाँ फैसिलिटी ऐसी है कि ऐसे कैंसर आदि के पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट मिले। उस जमाने में तो खाली बॉम्बे में एक ही टाटा हॉस्पिटल थी, वही थी कैंसर के लिए, और कोई हॉस्पिटल भी नहीं थी। मैंने कहा बाबा कैंसर हॉस्पिटल तो बॉम्बे में है, आप आबू में बुला करके क्या फायदा। तो कहा मैं क्या करूं, बॉम्बे में तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगी, बॉम्बे में तुम्हारे पास तो चार तीन बेड पृथ्वी भी नहीं है, और फिर इतनी बड़ी मामा जैसी हस्ती को आप लोग कहाँ रखेंगे। तो मैंने बाबा को आर्ग्यूमेंट किया, मैंने बाबा को कहा आप ऐसा कैसे क्यों कहते हो, क्यों हमारे घर में रहे हुए हैं। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारा पुराना घर तो खत्म हो गया है, एक ही घर है। मैंने कहा एक ही घर है तो क्या हो गया, हम आपस में मिलजुल कर, अगर हमारी माता जो है उसको बीमारी आती तो हम रह सकते थे या नहीं। तो इस प्रकार से मातेश्वरी जी की भी वहाँ हमारे घर में रहेंगी, कोई भी प्रकार की डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं। तो मैंने लास्ट में बाबा को कहा, बाबा पेशेंट को आप ही मुरली में कहते हो कि डॉक्टर जो है वो नेक्स्ट टू गॉड होता है, और पेशेंट को सबसे ज्यादा में ज्यादा जरूरत जो होती है वो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। हमने बाबा को कहा कि बाबा मातेश्वरी जी को पेशेंट के रूप में यहाँ रहेंगे तो हमारी बहन डॉक्टर है और उसके कारण 24 घंटा डॉक्टर उनकी सेवा में रहेगा, और उसके कारण सब प्रकार की मदद डॉक्टर के रूप में अनिलाबेन मम्मा को देंगी। तो बाबा ने कहा ठीक है। मैंने कहा बाबा आप दादा विश्व किशोर को भेजो और एक कोई माता को भेजो, तो जो सिंधी खाना जो बनाना पड़ता है वो बनाएंगे, और दादा विश्व किशोर यहाँ पर रहेंगे गांधीवी में, और वहां से आ जाएंगे यहाँ। इन्होंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार से बाबा ने, हमने फिर कानपुर में फोन किया, मैंने कहा मैं कानपुर फोन करता हूँ। तो बाबा ने कहा बच्चे तेरा कौन सुनेगा उधर, क्योंकि जब बाबा ने कहा हुआ है उनको कि कानपुर से मातेश्वरी जी को आबू भेजो, तो मुझे ही उनको कहना पड़ेगा कि आबू नहीं बॉम्बे भेजो। तो मैंने कहा ठीक है जो भी आप कहो। इस प्रकार से हमने भी कानपुर में फोन किया, बाबा का भी फोन लग गया, और मातेश्वरी जी बॉम्बे आ गए, दादा विश्व किशोर और एक कला माता करके एक बहन थी वो भी हमारे घर पे आ गई, और मातेश्वरी जी को हॉस्पिटल दिखाया गया। जब दिखाया गया तो डॉक्टर पी एम मास्टर करके एक डॉक्टर था, वो आया था, उसने मातोश्री जी का कैंसर का वो गांठ जो थी वो देख करके फौरन कहा कि ये कैंसर है। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर आप बायोप्सी किए बिना ऐसे ही आप कैसे कह देते हो, इट इज योर स्पेक्यूलेशन, आप स्पेक्यूलेशन के द्वारा हमारी मातोश्री जी है, शी इज अ वेरी बिग इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, और उसके कारण आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये कैंसर ही है। तो डॉक्टर पी एम मास्टर मेरे सामने देख करके कहते हैं कि मिस्टर रमेश दिस इज माई 40 ईयर्स एक्सपीरियंस, 40 साल का अनुभव है कि इस प्रकार की जो भी गांठ होती है वो मेलिग्नेंट होती है, मतलब उसमें कैंसर होता ही है, तो इसके कारण ये कैंसर ही है। फिर भी जब ऑपरेशन करना होगा तो पहले हम बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी में वो आएगा कैंसर है तो हम आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार से होगा आप फिक्र नहीं करो। तो हमने देखा कि इस प्रकार से डॉक्टर ने गांठ देखते ही कह दिया कि ये कैंसर है, और उसके आधार पर टाटा हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन का फिक्स हुआ। वहां भी एक बहुत बड़ी भारी परीक्षा आई, हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं ना तो ऑपरेशन के लिए नजदीक का रिश्तेदार होता है, वो कंसेंट लेता है कि हमारे पेशेंट को, हमारे रिश्तेदार जो भी है उसको भले आप ऑपरेशन कर सकते हो, ऑपरेशन में कुछ भी हो जाए उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम आपको जिम्मेदार नहीं कहेंगे। तो मातेश्वरी जी को दाखिल करने के लिए मैं गया, जमुना बेन थी, दादा विश्व किशोर थे, हम चार गए, और फिर जब गए वहां पर मातेश्वरी जी के साइड में बिठाए, एडमिशन लेना था, दादा विश्व किशोर जो है और किसी के डॉक्टर के पेम मास्टर के पास गए, तो वो नर्स ने फॉर्म भर कर दिया, और फॉर्म भर कर दिया उसमें कहा कि हु इज हर नियरेस्ट रिलेटिव, उनका नजदीक का संबंधी कौन है। तो हम तो आजू बाजू देखने लगे, यहाँ तो विश्व किशोर दादा नहीं है, कोई नहीं है। तो मैंने कहा कि अभी तो कोई नहीं है, तो कहा नहीं आप कौन है, तो कहा हम तो है, तो कहा आप साइन कर दो। तो मैं जब साइन करता था तो मेरे मन में प्रश्न हुआ कि एम आई द नियरेस्ट रिलेटिव ऑफ मातेश्वरी, मातेश्वरी जी का नजदीक का संबंधी मैं हूं क्या, मन में प्रश्न हुआ। फिर तो हमने बाबा को याद करके, बाबा जो भी होगा भविष्य में जो भी होगा क्या मालूम, अब तो ये नर्स कहती है, नर्स ने कहा कि आप साइन करेंगे तो उसके बाद ही हम आपको कमरा अलॉट करेंगे। हमने कहा ठीक है। फिर नर्स ने हमसे एक सवाल पूछा कि मातेश्वरी जी की इनकम क्या है, मातेश्वरी जी की इनकम क्या है, आप सब हम सब यहां बैठे हुए हर एक तो कोई ना कोई प्रकार की आमदनी तो होगी ही। हमने उसमें लिखा कि उनकी कोई भी इनकम नहीं है, तो फुल्ली सरेंडर्ड है दूसरी बाबा, और इसलिए उनके अपनी निजी जीवन की कोई भी आमदनी नहीं है। तो इन्होंने भी उसके ऊपर जीरो करके क्रॉस किया। हमने समझा नहीं ये क्या कर रहे, क्यों पूछा हुआ है। और गए और ऑपरेशन हुआ, जब विदाई लेने के टाइम पर हम गए उनके पास, हमने कहा आपका बिल दो, तो कहा आपका बिल कुछ भी नहीं है। हमने कहा क्यों, तो कहा आपने फॉर्म में लिखा हुआ है कि इनकी हम इनकम जीरो है, उनकी इनकम जीरो है, तो इसलिए हमारे हॉस्पिटल के नियम के मुताबिक हम उसके अंदर आपको इसके बारे में कोई चार्ज नहीं कर सकते, जो भी दवाई या भी डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया जो भी कुछ किया वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड थी। हमने कहा ये भी कमाल है, दादी जी मातेश्वरी जी का भाग्य के इस प्रकार से ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ और एक पैसे का भी खर्च नहीं हुआ। हम तो सब बंदोबस्त करके गए थे, क्योंकि आप जानते हैं हॉस्पिटल के अंदर पेमेंट करते हैं उसके बाद ही पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार से मम्मा को हॉस्पिटल के डिस्चार्ज मिल गया। फिर डॉक्टर ने कहा कि हर 3-3 महीने के बाद आने का है। तो इस प्रकार से आबू गए, फिर आए, आना जाना हुआ। फिर जब हम लोगों ने पहली प्रदर्शनी की थी, वो पहली प्रदर्शनी फिर मातेश्वरी जी के द्वारा उन्होंने उनका उसको देखा, और फिर उस टाइम पर सभी सारे हिंदुस्तान के बहन भाई आए हुए थे, उन सब की मातेश्वरी जी ने मीटिंग किया और सबको पूछा कि ये प्रदर्शनी की सेवा क्या है, प्रदर्शनी की सेवा क्या है। सबने बताया कि प्रदर्शनी की सेवा विहंग मार्ग की है, हमको अभी भी याद है जगदीश भाई ने जो कहा, जगदीश भाई ने कहा मातेश्वरी जी को कि अब तक मैं बाबा की एक बात नहीं मानता था, अपने ज्ञान में इतने लोग तो आते नहीं है सुनने के लिए, और बाबा कहते थे कि इतनी लंबी लाइन लगेंगी, लंबी लाइन लगेंगी, ऐसी बातें कहते हैं। तो मैं, मेरे मन में वो शंका थी, परंतु यहाँ आकर के हमने ये प्रदर्शनी की सेवा देखी और 400-500 लोग जो है शांति से लाइन में खड़े हैं, क्यू में खड़े हैं, और अपने टर्न आता है तब जाकर के देखते हैं। तो अभी इतना साधारण है, पहली प्रदर्शनी है, उसको भी देखने के लिए 400-500 लोग अगर शांति से खड़े रहते हैं, बैठे और क्यू में खड़े रहते हैं, तो जरूर आगे चल करके बाबा का ऐसा चमत्कारिक व्यवहार होगा, करिश्मा ऐसा होगा, ज्ञान का बीज इस प्रकार से होगा, तो बाबा को मिलने के लिए जरूर लंबी लाइन लगेंगी। इस प्रकार से बाबा के बारे में उनके मन में जो एक शंका थी, वो शंका भी कैसे हमारी प्रदर्शनी के द्वारा दूर हो गई। मातेश्वरी जी भी उनका बताया, सबको बता करके मातेश्वरी जी ने अबू में पत्र लिखा बाबा को, क्योंकि तब तक बाबा को मन में शंका थी कि प्रदर्शनी की सेवा के क्या होगा, क्या होगा। हमको भी बाबा ने लिखा था कि बच्चे हमारे झाड़ और त्रिमूर्ति जो है वो ही सफिशियंट है, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, फिर ये प्रदर्शनी के इतने चित्रों बनाने की क्या जरूरत है। परंतु मातेश्वरी जी ने हमको छुट्टी दिया था कि भले बाबा कुछ भी कहे, मैं तुमको छुट्टी देता हूँ, देती हूँ। और क्योंकि मातेश्वरी जी बॉम्बे में थे, हमने पूरा ही उनको बताया था प्रदर्शनी ऐसी होगी ऐसे, तो इसलिए मातेश्वरी जी ने पत्र खुद लिख करके उसमें सर्टिफाई किया कि ये प्रदर्शनी की सेवा हमने कल यहाँ सभी महारथी बॉम्बे के बहन भाइयों से बात की और सबको पूछा, और सबने जो भी बारगांव से आए थे, कोई पंजाब से आया था, कोई कहाँ से आए थे, उन सब के बीच में मीटिंग किया और सबने कहा कि ये प्रदर्शनी जो है वो विहंग मार्ग की सेवा है। तो बाबा ने कहा ठीक है, बाबा ने कहा बाबा देखेंगे तो मानेंगे। तो बाबा ने कहा कि मैं तभी तक नहीं मानूंगा, मैं प्रदर्शनी देखूंगा। और उसके बाद दिल्ली से प्रदर्शनी की सेवा जो है, प्रदर्शन हम बॉम्बे से दिल्ली लेके गए और बाबा ने हमको पत्र लिखा कि बाबा दिल्ली जा रहा है, तुम आएगा? मैंने कहा हम भी आएंगे, हम बाबा के साथ ट्रेन में, हम अहमदाबाद बॉम्बे से आबू आए, प्लेटफॉर्म पर ही क्लॉक रूम में वीआईपी रूम जो होता है उसके अंदर स्नान किया, नाश्ता किया और इतने में दिल्ली मेल आ गया। उनके साथ बाबा के साथ जाना हुआ, मातेश्वरी जी ऊपर ही थे और हम लोग जाकर के दिल्ली में प्रदर्शनी देखी। और प्रदर्शनी के बाद बाबा ने भी कहा कि नहीं ये बहुत अच्छी सेवा है। तो जो मातेश्वरी जी ने जो सर्टिफाई किया वो बाबा ने अनुभव भी किया और बाबा ने इस प्रकार से उसका विशेष कारोबार प्रदर्शनी की सेवा का किया। और इस प्रकार से हर बार हर समय में हमको मातेश्वरी जी की मदद मिलती रही। प्रदर्शनी की सेवा करना था तो हमने बाबा से मम्मा से पूछा कि हम बजट क्या कितना रखें, तो मम्मा के मुख से निकल गया 750 रुपया उसका बजट होना चाहिए। अब आप सबने अनुभव किया हुआ है 750 रुपया में एक प्रदर्शनी कैसे हो सकती है। हमने कहा मम्मा ठीक है 750 में ही हम करेंगे। तो हमने बाद में बाबा से योग लगाया, कहा कि जब हमको टारगेट मिला हुआ है 750 के अंदर करने का प्रदर्शनी का, तो हम कैसे ये कर सकेंगे। मातेश्वरी जी को हमने समझाया, मातेश्वरी जी ने कहा तुमको ज्यादा खर्च की जरूरत है। हमने ना कहा कि नहीं मातेश्वरी जी, आपने 750 का लिमिट दिया है, हम 750 में ही खर्च करने का प्रयत्न करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, हम जो स्कूल में पढ़े हुए थे उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास गए और हमने बताया कि क्रिसमस वेकेशन है, क्रिसमस वेकेशन के अंदर आपके स्कूल के नीचू के 3 हॉल है, 3 कमरे जो है बड़े, वो हमको दीजिए, हमको उसे प्रदर्शनी करने के। तो प्रिंसिपल ने ट्रस्टियों से बात करके हमको फ्री में हॉल दे दिया, तो इसलिए हॉल का तो कारोबार पूरा हो गया। फिर प्रदर्शनी के लिए लगाने के लिए पाइप्स और फ्रेम्स आदि चाहिए, तो खादी कमीशन वालों के पास हम गए और खादी कमीशन वालों को कहा कि हमको ऐसी प्रदर्शनी करनी है और बहुत सुंदर ये प्रदर्शनी होगी, उसके लिए आप हमको मदद कीजिए। तो इन्होंने अपनी फ्रेम्स आदि जो भी है, फ्रेम जो है, पिलर्स जो है, पाइप है, बहुत सुंदर वो फ्रेम्स थे। आज तक हमने ऐसे फ्रेम अभी तक हमारे प्रदर्शनी में वो लगे नहीं होते। बाद में तो महेंद्र भाई ने, जो भोपाल के महेंद्र भाई है, उसने अपने तरीके से फ्रेम बनाई, परंतु जो खादी कमीशन की फ्रेम्स थी बहुत सुंदर थी और खादी के कपड़े में थे। तो इस प्रकार से वो प्रदर्शनी के लिए पाइप आदि मिल गए। डेकोरेशन के लिए भी स्कूल के अंदर कुर्सियां टेबल थे, खाली एक स्टेज बनाना पड़ा, उसका खर्चा हुआ, और थोड़ा लिटरेचर जो है निमंत्रण का वो छाप करके दिया। महाराष्ट्र का गवर्नर जो है उसने आकर के उद्घाटन किया, और इस प्रकार से प्रदर्शनी की सेवा की शुरुआत हुई। तो मैंने मातेश्वरी जी को जब हिसाब भेजा, और मैं सन्मुख में भी गया था, तो मैंने बताया कि आपने 750 कहा, और 750 के अंतर्गत पहले तो मेरे मन में शंका थी कि कैसे होगा, परंतु हमने अनुभव किया कि अगर बाबा की और मातेश्वरी जी की मतलब जो भी बातें होती है उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा से काम करते हैं, तो पूर्ण श्रद्धा के रूप में बाबा से पूरी मदद मिल जाती है, और जो टारगेट बाबा देते हैं उस टारगेट को हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये हकीकत है, इतना हकीकत है। ये इसके कारण हमारा दृढ़ संकल्प हो गया कि बाबा के मम्मा के बातों के ऊपर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। वो इतने तक हो गया कि 71 में हम विदेश गए, 71 में हम 6 लोग विदेश गए। बाबा भी अव्यक्त हो गए थे, मातेश्वरी जी भी अव्यक्त हो गई थी, दादा विश्वकिशोर भी अव्यक्त हो गया था। हम 6 को बाबा ने छुट्टी दिया, भारत सरकार ने हमको फॉरेन एक्सचेंज दिया था प्रति डेलीगेट $6। $6 में वर्ल्ड की टूर टिकट यहां से ले लिया, सारी दुनिया का चक्कर हम कैसे लगा सकते हैं। तो कईयों ने हमको पूछा, सील दादी हमारे साथ में थी, उन्होंने भी कहा रमेश ये $6 में कैसे होगा। मैंने कहा $6 भी बहुत है, पहले जमाने में बाबा के पास से आप जब विदेश, जब कोई बॉम्बे गया कोई दिल्ली गया तब कहाँ था आपके पास, ज्यादा कहाँ पैसे थे, तो इसलिए $6 भी बहुत है। और $6 के आधार पर जब हम प्लेन में बैठे तो एयर होस्टेस जो है हेडफोन लेकर के आई, तो जगदीश भाई ने कहा ये क्या है हेडफोन, तो क्या हेडफोन है तो क्या है, तो गीत आपको सुनना हो हमारे यहाँ ऊपर टीवी में आता है, वो जो भी सिनेमा भी वो देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो जैसे जगदीश भाई ने हाथ लगाया तो उसने कहा कि इसका $3 पड़ेगा, $3 पड़ेगा। तो जगदीश भाई ने मुझे पूछा कि रमेश ये तो $3 कहता है, क्या कहती है ये माई, तो क्या करूं। मैंने कहा जगदीश भाई आपको सोचना है, हमारे पास $6 है, और $6 में से $3 खाली हेडफोन के द्वारा गीतों सुनने के लिए आप खर्च करेंगे तो बाकी $3 में कैसे कारोबार होगा। तो इन्होंने भी वो हेडफोन दे दिया, परंतु हमने देखा कि जब हम वर्ल्ड टूर पर करके आए तो भी अच्छे रिश्ते अच्छे में अच्छे रिश्ते सेवा करके आए, और जो भी धन लेके गए तो उस धन के अंदर ज्यादा आमदनी हुई कम नहीं हुई। हम गए तो बाबा ने अव्यक्त बाबा ने विदाई के टाइम पर कहा था कि आप देवता हो, देवता मना देने वाला आपका हाथ ऐसा, बाबा ने अव्यक्त करके भी दिखाया, एक्शन करके भी दिखाया ऐसा करना चाहिए, और जा करके सबको आप ज्ञान देने के लिए जा रहे हो, आपको किसी से भी धन लेना नहीं है मांगना नहीं है, मांगने से तो आप जानते हो बाबा मना करते हैं, तो इस प्रकार से काम करते रहे। तो ये जो बाबा मम्मा की जो है ना श्रद्धा कि अव्यक्त बाप दादा के ऊपर के जो भी होगा वो कल्याणकारी होगा, इस प्रकार का निर्णय कर करके हम चले तो क्या हो जाएगा, तो बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए हमने आज के दिन आपके सामने मातेश्वरी जी का जीवन का अनुभव रखा, इसलिए रखा कि ये जो आप यहाँ आते हो सफल करने का, कैसे जो आज का टॉपिक जो है हमारा, जो भी खजाना जो भी मिला उसको सफल कैसे करें, तो सफल करने के लिए सामने कुछ ध्येय होना चाहिए, सामने कुछ लक्ष्य रखना चाहिए। तो लक्ष्य के रूप में आज के दिन मातेश्वरी जी को लक्ष्य के रूप में सामने रखो कि कैसे इन्होंने हमारे से कम पढ़ाई होती थी, कम खर्च, कम धन का सहयोग दिया, कम 18-19 साल की या 20 साल की होंगी मातेश्वरी जी तब आए, और 20 साल की आयु में से 44 वर्ष की आयु में इन्होंने वो अव्यक्त हो गए, 24 वर्ष के या 24 या 25 वर्ष के पुरुषार्थ के अंदर इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया कि बाबा को भी ओवरटेक कर कर किया, आगे श्रेष्ठ पद प्राप्त किया। तो पुरुषार्थ की जय है, पुरुषार्थ का विजय है, और ये पुरुषार्थ का जय है। और पुरुषार्थ करने से हम क्या कर, जो भी लक्ष्य रखे वो प्राप्त कर सकते हैं, ये बात हमने मातेश्वरी जी के जीवन से सीखा और इसके आधार पर जीवन को सफल करने का तरीका सीखा। तो इसलिए आप सबके सामने भी ये बात इसलिए मैंने रखी कि मातेश्वरी जी को आपके सामने रोल मॉडल बना दो। रोल मॉडल बना करके मातेश्वरी जी जो है वो भी अपने जीवन को ऐसे सफल कर सकती है। जिस जमाने में ज्ञान का कोई गहराई भी नहीं थी, इतनी भी बातें नहीं थी, और फिर भी कैसे कारोबार हुआ, कैसे कारोबार चलाया मातेश्वरी जी ने, उनको इतना अनुभव भी नहीं था तो भी कैसे हुआ। मातेश्वरी जी ने कहा कि जब बहनें सफल समर्पित होकर के आई यज्ञ में, सबके पास कपड़े भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, एक रात में मतलब मातेश्वरी जी ने उस जमाने में 1936-37 में 30,000 रूपये का कपड़ा खरीद किया, और कपड़ा खरीद करके दूसरे दिन सुबह सबको ये जो कपड़े आदि दिया, और उसके आधार पर उस यज्ञ का व्यवहार चला। तो इस प्रकार से अनुभव ना होते हुए भी हम मातेश्वरी जी ने ऐसा कारोबार किया कि यज्ञ का कारोबार सफलता के आधार पर बहुत ही अच्छी रीति से चलाया। मैंने आपको कहा ना कन्या के रूप में थी। शांति। मैं अंत में आप सबको यही कह रहा था कि आप सब भी यहाँ भट्टी में आए हुए हैं और बहुत आप सौभाग्यशाली है, हम सब सौभाग्यशाली है कि माधेश्वरी जी के अव्यक्त दिन पर ही हम यहाँ पर है। तो इसलिए हम सब एक दृढ़ संकल्प करें कि हमारे जीवन का रोल मॉडल जो भी होगा, जिसके हम फॉलो कर सके, सहज रूप में फॉलो कर सके, ऐसा माधेश्वरी जी का जीवन था। और इन्होंने 24 साल के ही पुरुषार्थ के अंदर इतना ऊंच पद प्राप्त किया, तो हम तो उनसे भी ज्यादा समय से पुरुषार्थ में लगे हुए, तो क्यों नहीं हम भी श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से ये श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का हिम्मत कहो, बल कहो, माधेश्वरी जी को अगर हम सामने में रखेंगे तो माधेश्वरी जी के द्वारा श्री बाबा भी हमको इतना श्रेष्ठ पद देंगे। तो इस प्रकार से आप सबको हमारा अनुरोध है कि आप माधेश्वरी जी को रोल मॉडल बनाइए और उनके आधार पर, इन्होंने जैसे अपने जीवन को सफल किया, अपने व्यवहार को सफल किया, जो भी चीज थी उनके पास वो सब सफल करके जीवन को श्रेष्ठ बनाया, हम भी उस प्रकार से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करें। और परमात्मा शिव बाबा आप सबको, हम सबको ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए निमित्त बनावे, बल दे, और हम भी ऐसा श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का तीव्र गति का पुरुषार्थ करें। यही प्रेरणा लेकर के यहाँ से अपने घरों में जाएंगे। ओम शांति। अब 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और फिर आगे का कारोबार चलेगा।